तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। स्वागत करता हूं मैं आप तमाम लोगों का इस शो जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स। नवरात्रि का त्योहार जो है वो खत्म होने को आया है और आज का जो दिन है वो है दशहरा। कोविड के बाद गरबा इवेंट, माता का पंडाल देखकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंजॉय किया मैंने भी और उम्मीद करता हूँ आप सब ने। बहरहाल आज की कहानी एक नई कहानी हिस्ट्री के ऊपर, जैसे कि मेरे एक जो फ्रेंड है अजीज़, उन्होंने मुझे दुबई से एक कांटेक्ट किया मुझसे और उन्होंने कहा कि मैं इस पर एक उन्हें जो है इस टॉपिक पर कहानी सुनाऊं। सो कहानी की ओर चलने से पहले, जैसे कि रिवाज है, एक क्विक न्यूज़ अपडेट मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूं। वैसे काफ़ी तरह तरह की खबरें जो हैं आप सुन रहे होंगे इस दरमियान, इस हफ्ते और पिछले हफ्ते भी, लेकिन जो एक मज़ेदार जो न्यूज़ है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि एक बिहार में एक लड़का है, उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक लड़की से प्यार हुआ और दोनों ने शादी का मन बना लिया और दोनों ने शादी कर ली। ताजुब की बात यह है कि आए दिन हम जहाँ सुनते हैं कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू लोग मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उन्हें प्यार होता है, शादी, ये काफ़ी आम बात है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, लूडो, जो शायद आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग खेलते होंगे। सो इस लूडो गेम में जो है एप्लीकेशन है, इस गेम के थ्रू वो दोनों मिले और दोनों को प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली और काफ़ी ताजुब हुआ ये सुनकर कि लूडो, जहाँ हम इवन मैं भी काफ़ी मैंने लूडो खेली है, इवन तो मेरे जो दोस्त हैं वो भी हम खेलते हैं आपस में, लेकिन जहाँ हमें पहले डाइस में हमारी गोटी बाहर नहीं निकलती, वहाँ पता नहीं कैसे लोगों को उनका प्यार मिल जाता। लेकिन काफ़ी मज़ेदार खबर मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए, सो मैंने आपसे की। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की जो कहानी है, जैसे कि आपने जो है टाइटल पढ़ी लिया होगा कि आज की जो कहानी है वो डिपेंडेंट होने वाली है हिस्ट्री पर, कोल्ड वॉर। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है कोल्ड वॉर का, और इससे रिलेटेड कि कोल्ड वॉर देखिए कैसा है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड, ये तो हुआ है, लेकिन जो कोल्ड वॉर है वो सबसे ज़्यादा लंबा समय तक चलने वाला है, जहाँ पर रशिया और यूएसए जो थे वो आमने सामने तो थे ही, लेकिन एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कभी गोली नहीं चलाई। लेकिन जो इन दोनों की जो आपसी जो दुश्मनी है, उससे जो दुनिया पर जो उसका प्रभाव पड़ा, जहां पर दुनिया में लाशें गिर गई, कई लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को खोया, कईयों ने अपने राष्ट्रपति को खोया। सो आज के जो टॉपिक है वो इसी पर है, कोल्ड वॉर पर। सो कोल्ड वॉर की जो शुरुआत है, शुरुआत करता हूं मैं अमेरिका और रूस से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपको पता ही होगा 1914 में चालू हुआ और 19 में खत्म हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है 1939 को स्टार्ट हुआ और 1945 को जो है वो एंड हुआ उसका, जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पे जो यूएसए द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ, उसके बाद सरेंडर कर दिया जापान ने, तो वहां पर वो ख़त्म हुआ। और मैंने जैसे कि पिछले एपिसोड में बताया भी था कि 15 अगस्त जहां पर सरेंडर किया था टोक्यो ने, सो उसी वहां पर अंग्रेज़ों ने अपनी जीत का जो है वो जश्न मनाया और उसी से रिलेटेड हमको 1947 में आज़ादी मिली, सेम डेट पर। दरअसल स्ट्रक्चर तो 18 जुलाई को ही रेडी हो गया था। सो चलते हैं अभी कहानी की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1945 में ख़त्म हुआ और जो कोल्ड वॉर है वो जो स्टार्ट हुआ है वो रशिया और यूएसए के बीच में स्टार्ट हुआ था 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक यूएसएसआर जो है वो 15 देशों में टूट ना गया। जो आज का जो रूस है जो हम देखते हैं वो दरअसल 15 देशों मिलाकर एक यूएसएसआर हुआ करता था और वो टूट गया 1991 में, उसके बाद जो कोल्ड वॉर है उसकी ख़त्म हुई। लेकिन अभी फिर से ये शुरू होने वाला है, क्योंकि जैसे आप देख ही रहे होंगे माहौल सब जगह, यूक्रेन, रशिया और यूएसए, जापान, चाइना को देखकर, सॉरी जापान कह रहा हूँ, ताइवान को देखकर। तो 1945 टू 1991 इस दौर में जो है वो काफ़ी उथल पुथल हुई दुनिया में, क्योंकि पहली जो यूएसए का कहना ये था कि हम हैं पहली दुनिया वाले और यूएसएसआर का कहना था हम हैं दूसरी दुनिया वाले। पहली दुनिया का मतलब अमेरिका चाहता था कि दुनिया उसके इशारों पर चले, उसके तरफ चले, उसके फेवर में चले, और रूस चाहता था कि ये सब जो बाकी की दुनिया है वो रूस के फेवर में चले। लेकिन कहीं जगह पे आपसी जो है वो मतभेद थे, क्योंकि कई जगह यूएसए के साथ थे और कई लोग यूएसएसआर के साथ थे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो सीरिया है, सीरिया, लीबिया, ये जो थे वो इवन इराक भी जो था वो रशिया के फेवर में था। लेकिन आप सबको पता है, मुझे पता है कि क्या हुआ इन तीनों देशों के साथ। लीबिया के साथ गद्दाफी चले गए, वहाँ सद्दाम हुसैन चले गए, उसके बाद सीरिया का हम तो हाल देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यूएसए ने कभी रशिया पर डायरेक्ट हमला नहीं किया, उन्होंने उन देशों पर हमला किया या उन देशों पर उन्होंने जो है विद्रोहियों को जो है पनपाया जहां पर रशिया के साथ थे वो, और सेम चीज रशिया ने भी किया। सो बहरहाल दौर था 1945 हमारा, 45 के आगे 1947 हमारा देश आजाद हुआ। जो नेहरू जी हैं वो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुने गए। उसके बाद अब क्योंकि हमारे जो इंडिया पे था वो अंग्रेजों का शासन था, जो कि लोकतांत्रिक उनका ये था, और उसके पहले जो हम थे इंडियंस उस पर राजतंत्र था, तो हमको लोकतंत्र के बारे में उतना जानकारी नहीं थी। हालांकि बहरहाल हमारे यहाँ प्रोसेस और स्ट्रक्चर सब कुछ मौजूद था। अंग्रेज जब गए इंडिया से तब उन्होंने अपने देश को उस मुहाने पे छोड़ दिया जहाँ पे सिर्फ अंधेरा था, क्योंकि किसी को पता नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पहले राजतंत्र हुआ करता था। बहरहाल हम उस चीज़ों को अडॉप्ट करते गए, लेकिन चाचा नेहरू को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको जो है वो सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये आ गया कि अब हम किसका साथ दें, पहली दुनिया का या दूसरी दुनिया का। क्योंकि अगर मान के चले अगर हम अंग्रेजों से हम आज़ाद हुए थे तब नए नए, अगर हम पहली दुनिया के फेवर में जाते तो रूस हमसे जो है वो दुश्मनी कर लेता था, या हम भी हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ था, हो जाता जो आज लीबिया और बाकी कंट्रीज का है। सो बहरहाल उस समय में जो नेहरू जी थे उनका एक काफ़ी सराहनीय कदम माना गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया का मतलब है नॉन अलाइजिंग मोमेंट। अब ये जो नाम NAM नॉन अनलाइंड मोमेंट जो है वो चला तब नेहरू जी जब इस अध्यक्षता कर रहे थे एक्चुअली नाम की। सो ये जो नाम जो चल रहा था उसमें अगर हम सिर्फ अकेले थे इंडिया के, क्योंकि भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे नेहरू, तो नेहरू के सामने ये सवाल आ गया कि अगर हम अकेले रहेंगे तो हम पिटा जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी अगर तब के, और ये बात सच सच भी है, अगर हम तब अकेले होते या फिर हम तो रशिया और यूएसए ये सोचते कि आप मतलब ये देश क्यों ऐसा कर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं थी अगर हम अंग्रेजों से आज़ाद हो जाते और अगर हम अकेले हो जाते नॉन अलाइजिंग मूवमेंट में, तो हमें रशिया और अमेरिका का गुलाम होना पड़ता था या फ्रांसीसियों का गुलाम होना पड़ता था, और वो कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हम आज भी उतने ताकतवर हैं नहीं। रशिया और अमेरिका जितने ताकतवर हम आज भी नहीं है, तो वो तो आज़ादी के तुरंत बाद वाला था। इसलिए वो जो अब उसमें जो नेहरू जी थे उनके सामने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ गया कि अब हम क्या करें, कैसे करें। तो उन्होंने साथ में जोड़ लिया मलेशिया को, उसके बाद में उन्होंने साथ में ले आए इजिप्त को, मिस्र को, और साथ में आ गए यूकोस्लाविया। तो यूकोस्लाविया, इजिप्त, यहाँ पे हमने मलेशिया को ले लिया, और हम ऐसे चार देश मिलके हमने नॉन अलाइजिंग मूवमेंट जो है वो सामने कर दिया, और हमने अपने आप को कह दिया कि हम तीसरी दुनिया से, हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम डेवलप्ड कर रहे हैं अभी, हम किसी के साथ नहीं है और ना किसी के खिलाफ है। लेकिन हम जैसे कि इंडियंस है, और इंडियंस की हमेशा एक प्रवृत्ति होती है, चाहे वो बहुत शरीफ आदमी हो चाहे वो बहुत बदमाश किस्म का आदमी हो, तो हम इंडियंस का एक ये है कि हम हमेशा अपने जो एक कॉन्टेक्ट है वो बना के रखते हैं बड़े लोगों से। आप ये आपको हर जगह देखने मिलेगा, चाहे आप अपने कॉलेज लाइफ में हो या आप अपने दफ्तर में हो, हम चाहते हैं कि हम अपने बॉस से करीब रहे जो हमसे हेड हैं। तो वैसे ही जो एक क्वालिटी थी वो हमें भी थी, तो हमने चुपके से जो है वो रशिया से हमने समझौता कर लिया था उस टाइम पे। लेकिन हमने रशिया को कहा कि हम कभी कभी भाई भाई की तरह रहेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम थे नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। सो और ये बात ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर लोगों को समझ में आ रही थी तब, लेकिन हम फिर भी स्वतंत्र थे क्योंकि हम पे रशिया का कभी जोर नहीं चला। हमने ऐसा कभी नहीं किया कि रशिया ने कुछ कह दिया और हमने वो कह दिया, हम स्वतंत्र थे अपने फैसलों को लेकर। बहरहाल ये सब हुआ 1960 और 1961 में जो है वो नॉन अलाइजिंग मूवमेंट अपने चरम सीमा पे था। हम चार देश अलग, उसके बाद USA और रशिया एक तरफ, अब सब जगह विद्रोही और ये सब खेल चल रहा है पॉलिटिक्स का। और वहीं पे रशिया के साथ एक जो है वो बहुत धोखा हो गया, क्योंकि रशिया जहाँ पर आप उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे तो रशिया के जहाँ पे रशिया पड़ता है उसके ऊपर जो नॉर्थ पोल है, सो वहाँ पे कोई ऐसी पहाड़ी नहीं है जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में आप देखेंगे कि हिमालय है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, राइट। इसलिए हम पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मान के चले अगर वो हिमालय अगर आप 2 मिनट के लिए वहां से हटा दे तो ठंड जो है वो भारत में भी बहुत बढ़ेगी। सो उस हिसाब से देखा जाए तो जो रशिया है उसके ऊपर में कोई भी जो है वो पहाड़ नहीं है, ताकि वो जो डायरेक्ट ठंड पड़ती है वहां पर रशिया में, साइबेरिया में आपको पता ही होगा -75 तक टेम्परेचर चला जाता है। सो वहां पर जो है वो पूरी जो पानी है वो जम गया था रशिया के ऊपर का, तो उस वजह से वो अपनी जो नौसेना है वो हिला नहीं सकती थी, क्योंकि अब नौसेना जो है वो आपको दूर की लड़ाई में काम आएगी ना। आप एयरफोर्स से भी आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आप एयरफोर्स कहीं डिप्लॉय कर दे, मान के चलिए अगर हमें बांग्लादेश पे हमला करना है तो हम या फिर बांग्लादेश छोड़िए या फिर जैसे पाकिस्तान पे हमको हमला करना है, तो हमला करने के लिए हम एयरफोर्स का साथ देंगे क्योंकि वो बहुत नज़दीक है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हमको मान के चले USA पे हमला करना है तो हमारी एयरफोर्स वहाँ काम नहीं आएगी, वहाँ काम आएगी नौसेना, क्योंकि हम अपने जो बड़ी बड़ी शिप हैं वहाँ पर हम अपने एयरक्राफ्ट और अपने जो जवान हैं उनको जो है डिपोर्ट करके हम वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पे फिर उनको उतार कर हम हमला करेंगे। लेकिन रशिया के साथ ये दिक्कत थी, तो रशिया ने भारत से कहा कि आप कुछ मदद कीजिए हमारी यहाँ से। तो भारत जो था वो नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, लेकिन फेवर तो फिर भी रशिया का था। तो क्या हुआ कि दरअसल USA जो है वो भारत की तरफ आया। सो उन्होंने नेहरू जी को कहा कि आप हमें जो है एक तमिलनाडु में कहीं पे आप हमें एक रडार स्टेशन लगाने की जो है वो अनुमति दे, वहाँ पे जगह दे, हम अपनी एयरफोर्स वगैरह वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये भली बात ही जानते थे नेहरू जी, क्योंकि अगर आप तमिलनाडु में रहेंगे तो इवेंचुअली आप जो है इंडियन ओशन में आप डोमिनेंस कर सकते हैं, क्योंकि कैसा है जब अगर सपोज आपको जो ट्रेड रूट है ये जो फोर टाइगर जिसे हम कहते हैं एशिया के जो चार जो देश हैं उसे फोर टाइगर कहा जाता है, जिसमें सिंगापुर भी है, फिलीपींस भी है और एक दो देश है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ फिलहाल, सो थाईलैंड वगैरह। तो यहाँ पर वहाँ से जो रास्ता होके निकलता है सिंगापुर के तरफ से मलक्का जिसे हम कहते हैं, और मलक्का की जो दर्रा है वहाँ से निकलकर वो अंडमान निकोबार, तो अभी जो चाइना का जो ट्रेड रूट है वो वही है। अगर आप देखेंगे तो चाइना का जो नक्शा है वहां से दक्षिणी चीन सागर वहां से होते हुए सिंगापुर में, सिंगापुर भी इसलिए डेवलप कर पाया क्योंकि वहां पर वो दर्रा है मलक्का का और वहां पर उन्होंने अपना पोर्ट बनाया, सिंगापुर ने काफी अच्छा डेवलप किया और वहीं पे आके सारी जो बड़ी बड़ी मर्चेंट जो शिप्स हैं वो वहां पर आती हैं, इवन दो सैनिक वाली जहाज है युद्धपोत वगैरह सब वहां पे रुकती है, अपनी राशन पानी लेती है और अपना डीजल वगैरह फ्यूल वगैरह भर के वहां से रवाना होती है। सो वो जो रूट था वहां से रशिया को ये थ्रेटन था कि अगर वहां से वो आते, मान के चले रशिया अगर को आना हो तो चाइना को क्रॉस करते हुए अगर वो वहां से आते तो उनको बहुत लंबा पड़ जाता, और जबकि USA जो है वो डायरेक्ट ग्रीनलैंड की ओर से UK के तरफ से वहां पर जाके अप्रोचेबल था। सो ये चीज जो है वो रशिया को काफी थ्रेटन कर रही थी और इसी का फायदा उठा लिया USA ने, USA ने कहा भारत से, लेकिन भारत तो था नॉन अलाइजिंग मूवमेंट और रशिया के हम दोस्त भी थे। तो हमने जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी ने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते, आप पॉडकास्ट नहीं सुनते हैं क्राइम फ्लिक्स वहाँ पे, सो वहाँ पे हम नाम में हैं तो हम आपका साथ नहीं दे सकते। सो इस वजह से जो है USA चला गया वहाँ पे, लेकिन USA ने देखा कि यहाँ पर कौन सा ऐसा देश है जिसे बहलाया जा सकता है, तो उनकी नज़र पड़ी श्रीलंका पे। तो अब जो श्रीलंका है, श्रीलंका के दो मेन जो बंदरगाह है वो एक है नीचे हम्बन टोटा, जिसको लेके अभी बहुत सारा विवाद और जियोलॉजिकल जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, और एक था कोलंबो। तो जो हम्बन टोटा है जो सबसे नीचे श्रीलंका का जो एक सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर साउथ दक्षिणी वाला वहां पर है हम्बन टोटा बंदरगाह। तो वहां पर जो है यूएसए ने बहुत पैसा दिया, बहुत कुछ श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चालू करी। उसके बाद श्रीलंका भी धीरे धीरे जो है वो अमेरिका के फेवर में होते गया कि बहुत सारा पैसा आ रहा है और ये सब। तो उस बार फिर जो है श्रीलंका खुश हो गया और तभी अमेरिका ने जो है वो श्रीलंका से कहा कि आप जो है हमें एक बंदरगाह दे दें, हमें एक जो है रडार स्टेशन लगाना है। रडार स्टेशन लगाकर सबको पता था कि वो नज़र किस पर रखने वाला था, क्योंकि अंडमान निकोबार से ही होते हुए जो श्रीलंका का जो रूट है ट्रेड रूट, वहीं से सारी रशियन जो है उनकी सबमरीन्स और ये सारी सब कुछ गुजरनी थी। तो यहाँ पे जो थ्रेटन था वो तो वहाँ पर श्रीलंका मान गया। श्रीलंका ने तुरंत ने कहा हाँ ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया इतना सब कुछ, और श्रीलंका भी खुश था अमेरिका से। सो वहाँ पर जो है वो तैयारी चालू हो गई हम्बन टोटा में। लेकिन यहाँ पर रशिया जो है तब बहुत ज़्यादा भड़क गया और उस पर कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने भारत से कहा कि सुनिए ना भारत, आप समझाइए, आप कुछ कीजिए हमारा, नहीं तो जो है वो सारा इंटरप्ट कर लेंगे वो सब, और इंटरसेप्ट हो जाएंगी हमारी सारी गुफिया जानकारी। सो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम्बन टोटा बंदरगाह क्यों, और क्यों जो रशिया है वो अपना थ्रेट समझ रहा था यूएसए को। क्योंकि आप समझिए दरअसल क्या होता है कि अगर आप मान के चलें कि जैसे आप हैं, आपका और आपके दुश्मन का अगर कोई भी लड़ाई आप किसी के साथ भी आप कर रहे हैं, अगर उन दोनों की लड़ाई अगर आपकी और आपके पड़ोसी की लड़ाई अगर आपके किसी और पड़ोसी के घर पर हो रही तो क्या नुकसान है, समझ रहे हो। मान के चलिए भारत और चाइना की लड़ाई अगर जापान में हो रही तो हमको क्या है ना। तो ये बात वैसे ही थी क्योंकि अमेरिका तो आ गया था ना श्रीलंका, और रशिया तो ऑब्वियसली अपनी जगह छोड़ के वहां से जो है वो इसको बाईपास करने की सोच रहा था। सो तब श्रीलंका को तब ये गेम समझ में नहीं आया, लेकिन तब भारत ने काफी जो है समझा इस चीज को, और तभी वहां पर एक आतंकी संगठन था, आतंकी मतलब वो एक विद्रोही था एक किस्म का श्रीलंका में, नाम था लिट्टे LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलनम, जिसका जो हेड था वो था प्रभाकर। अब आप यूं कहें कि हमें भी हमारी भी विदेश नीतियों में एक ऐसा एक दाग है, क्योंकि सब जानते थे इवन दो आज भी जो लिट्टी को जो बढ़ावा देने का जो काम था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन मतलब इंडिया का ही था, क्योंकि हमें मदद करनी थी रशिया की, और रशिया ने हमसे कहा था कि आप बस हमें इस चीज से बचा लीजिए, ये जो रडार स्टेशन उससे बचा लीजिए, हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज भी आप देखेंगे कि भारत और रशिया जो है वो काफी अच्छे दोस्त हैं, आज भी रशिया जो है वो भारत का खुल के समर्थन करता है, क्योंकि हम भी अपनी दोस्ती निभाए थे एक जमाने में। सो दोस्ती निभाने का जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि LTTE जैसे मैंने आपको बताया ये जो था वो एक जाफना करके जो इलाका है श्रीलंका का उत्तरी साइड में, जहाँ पे अपना ये जो एडम ब्रिज जिसे हम राम सेतु जिसे हम एडम ब्रिज कहते हैं, सो वो एक ये था उसमें उस इलाके में, वहां से ठीक राम सेतु जो है वहां से बिल्कुल चिपकता हुआ जो एरिया जो चालू होता है श्रीलंका का उसको जाफना कहते हैं। तो वो जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलनम वाले थे उनका ये कहना था कि आप हमें एक अलग देश कीजिए। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि श्रीलंका ऑलरेडी इतना छोटा है, उसमें से भी और अलग टुकड़े उसके किए जाए तो ये पॉसिबल नहीं था श्रीलंका को श्रीलंका के लिए। लेकिन वहाँ पे जो था जो तमिल लोग जो थे काफ़ी वो जाफना एरिया में, तो इवन आज भी हम देखेंगे तो तमिलनाडु के जो लोग हैं वो हेट करते हैं श्रीलंका को। आज भी वहाँ पे मतलब इजीली क्रिकेट के श्रीलंका को खेलने नहीं दिया गया था मैच। अगर आप कभी देखेंगे चेन्नई में तो कभी श्रीलंका और इसका बहुत चलता है। इवन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब हम्बन टोटा का जो एक बुरा हाल हुआ था तब, तो आज जो चाइना जो हम्बन टोटा पे जो डोमिनेंस कर रहा है वो हमारे इवन दो इंडिया के पास भी था, श्रीलंका ने कहा था इंडिया से कि आप हमारे जो बर्बाद हो गया जो हम्बन टोटा आप उसे डेवलप कीजिए, हम आपको ऑफर करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार थी और तब ये जो तमिलनाडु वाले जो लोग हैं, अब मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो बहुमत सरकार नहीं थी मोदी जी जैसे, इस वजह से जो है वो तमिलनाडु के जो लोग हैं उन्होंने अपना जो है वो अलायंस जो है वो वापस खींच ले, और तब मनमोहन सिंह प्रेशर में आके उन्होंने जो है वो फैसला नहीं ले पाए। बहरहाल जो लिट्टे हैं, ये पहला ऐसा आतंकी विद्रोह था, मतलब विद्रोही गुट था जिसकी खुद की एयरफोर्स थी, जिसकी खुद जो जो नेवी जो है वो खुद डेवलप कर रहा था। अब आप सोचिए कि अगर भारत में नक्सलवादी जो है वो तो सिर्फ गन से मतलब हमला करते हैं ना, छुप के, गोरिल्ला वॉरफेयर जैसा, आते हैं, छुपते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर क्या हो अगर नक्सलवादियों के पास एयरफोर्स हो, क्या हो अगर उनके पास अपनी नेवी हो। सो ये इतना मतलब दुनिया का पहला आतंकी और विद्रोही गुट था जिसकी खुद की एयरफोर्स थी। इवन तो इस चीज को समझने के लिए आपने मद्रास कैफे, काफी सालों पहले एक फिल्म आई थी जॉन अब्राहम की, उसका आप उसको आप देख लीजिए। इवन तो एक फैमिली मैन करके वेब सीरीज, काफी फेमस वेब सीरीज है अमेजोन में, आप उसे भी देख सकते हैं, उसका भी एक पार्ट लिया गया है सीजन 2 में। सो बहरहाल जाफना में बहुत ये सब हुआ और प्रभाकरण को जो है भारत बहुत अच्छे से समझता था कि अगर किसी चीज पे अगर हमें स्ट्राइक करनी हो तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो इवन दो सब कुछ भारत ने पैसा दिया, इवन दो कहा जाता है कि आर्टिलरीज वगैरह भी प्रोवाइड करी, और प्रभाकरण ने जो मारना चालू किया श्रीलंका को, जाफना का पूरा एरिया जो हमें लगता था, इवन दो भारत को ये लगता था कि ये बंदा इसने इतना कैसे किया, अब डोमिनेंस कर लिया श्रीलंका को। अब आप सोचिए कि जहां पे सिर्फ 20% ऑफ श्रीलंका, सॉरी 35% ऑफ श्रीलंका जहां कैप्चर होने की बात कर रही थी, चल रही थी, अभी ऐसा लगने लगा था कि ये लोग श्रीलंका को ही अलग देश बना देंगे। इसका मतलब है कि श्रीलंका को अपने आप से तोड़ लेंगे। मोर देन 60% इन्होंने कैप्चर कर लिया था प्रभाकरण ने। इतना ना वहां पे मतलब तबाही मचा दिया था प्रभाकरण कि खुद भारत की सरकार भी इस चीज से मतलब खौफ खा गई थी। और ये सब किस वजह से हो रहा था? रशिया और अमेरिका की वजह से। सो बहरहाल क्या होता है आगे, क्या होता है हम्मन टोटा की स्टोरी और क्या है प्रभाकरण की स्टोरी, इसको हम समझेंगे अगले एपिसोड में, और आपको बताएंगे कि कैसे हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, उनकी हत्या प्रभाकरण ने कैसे की और क्यों की। बहरहाल आज का जो एपिसोड है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और ऐसे ही आप मुझे जो है वो बताते रहिए आपकी अगर कोई फेवरेट टॉपिक या फेवरेट स्टोरी होगा, तो मैं ऑफकोर्स कोशिश करूँगा उसे आप तक पहुँचाने की। और बहरहाल ये था कहानी का अंत। इसके बाद की जो कहानी है हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 2 में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखें, और सुनते रहें, देखते रहें, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए क्राइम फ्लिक्स को। धन्यवाद।